मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 15 मई 2015 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इसी क्रम में स्वागत करता हूं मैं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं संदीप कुमार जो पुणे से हैं और सुभाष कुमार आप मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। तो संदीप और सुभाष, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज शुक्रवार है और आप जानते हैं कि शनिवार कि चीजों में हम लोगों ने कुछ परिवर्तन किए हैं और खासकर शनिवार को उस तरह का लाइव ऑडियो आप कह सकते हैं, लाइव ऑडियो कहने का मतलब करंट न्यूज पर बेस्ड ऑडियो अब हम लोग नहीं दे रहे हैं, उसे हमने थोड़ा सा चेंज किया है। तो उसके आधार पर मुझे अब आज ही कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाएं देनी है, तो प्लीज उस महत्वपूर्ण सूचनाओं को पहले आप सुन लें। तो पहली बात तो यह है कि कल जो आपका सैटरडे ऑडियो जिसे हमने सैटरडे ऑडियो कहा है वो कल आएगा और उसका जो विषय है वो मैंने रखा है सी सेट की तैयारी के लिए आपकी जो रणनीति होनी चाहिए। हुआ मित्रों, कल के अपने ऑडियो में मैंने बताया था, थोड़ी सी सूचना दी थी, अखबारों में भी आप देख रहे हैं कि अब सी सेट के पेपर को क्वालिफाइंग पेपर बना दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपकी रणनीति थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। एक बात मैं यहां स्पेशली कहना चाहूंगा कि क्वालिफाइंग होने की वजह से आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है या बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। डेफिनेटली अब पहले जितनी तैयारी की जरूरत आपको नहीं होगी और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मान करके चलिए कि जो इसकी तैयारी कम करने की वजह से जो आपके पास वक्त बचेगा, ये सिर्फ आपके पास ही नहीं बचेगा, वो सबके पास, सबके लिए होगा, सबके पास वो वक्त बचेगा। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से केवल आप ही जनरल स्टडीज की ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं करेंगे बल्कि दूसरे स्टूडेंट भी अच्छी तैयारी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर जनरल स्टडीज के कट ऑफ मार्क्स थोड़े से अगर बढ़ जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि इसे आप अतिरिक्त फायदे के रूप में न लें बल्कि इस रूप में लें कि फिर से एक अलग तरीके की चुनौती है कि अब आपको जनरल स्टडीज में और अच्छी तैयारी करनी है। दोस्तों, आप लोगों को ध्यान है कि पिछले सैटरडे को मैंने जो 3.5 महीने जो बचे हैं आपके सिविल सर्विस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए आपकी कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, समय आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, उसको लेकर के ऑडियो प्रोवाइड किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में अब मैंने सी सेट की तैयारी के बारे में आपके लिए सैटरडे ऑडियो तैयार किया है जो आपको कल अवेलेबल होगा। मित्रों, इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के जो स्टूडेंट हैं उनको संडे को स्पेशल ऑडियो गाइडेंस मिलेगा और उसका विषय होगा उस प्रश्न पर आधारित जो तीसरे प्रश्न के रूप में उन्हें लिखने के लिए दिया गया था। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उन्हें एक प्रश्न दिया गया था कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2014 की रिपोर्ट किसानों के लिए अब तक किए गए सरकारी प्रयासों की विफलता को इंगित करती है, इस तथ्य के आलोक में किसानों के आर्थिक विकास हेतु कुछ ठोस स्थायी किंतु व्यावहारिक उपायों की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आप लोगों को दिया गया था। तो संडे का जो स्पेशल ऑडियो आपको मिलेगा वो इसी पर आधारित होगा, इसी प्रश्न को ध्यान में रखकर, इसी प्रश्न को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। मित्रों, मुझे सच पूछे तो इस बात की बेहद खुशी है कि पिछले सप्ताह जो सैटरडे का ऑडियो था और संडे का जो स्पेशल ऑडियो था इसके बारे में आप लोगों की बहुत ही ज्यादा प्रशंसापूर्ण एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला है। इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने मुझे उसकी सूचना दी है और निश्चित रूप से ये आपकी जो सूचनाएं होती हैं मुझे आगे और उत्साह के साथ करने में, साथ ही साथ और अच्छा करने में आगे रास्ता दिखाती है। तो मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, संडे को जो आपका योजना और कुरुक्षेत्र के जो आर्टिकल्स आते हैं वो मित्रों ज्यों के त्यों ही आएंगे। मित्रों अब एक अंतिम एक दो सूचनाएं और। मैंने इस बार इस सप्ताह में आपको कोई प्रश्न लिखने को नहीं दिया है। इससे पहले मैं हर सप्ताह प्रश्न देता था और तीन सप्ताह तक मैं ये करता रहा हूं। मित्रों सच पूछे तो मुझे ये लगा कि मैंने तीन प्रश्न नमूने के बतौर आप लोगों को दे दिए हैं, जिसमें एक प्रश्न का बहुत विस्तार के साथ, जो मनरेगा से जुड़ा हुआ प्रश्न था, बहुत विस्तार के साथ मैंने एक जनरल तरीके से उसकी चर्चा की। वो मेरे सभी स्टूडेंट्स को अवेलेबल हुए जो क्लास में आए थे उन्हें भी और जो नहीं आ रहे हैं उन्हें भी। तो वो एक नमूने के तौर पर था, एक मॉडल था जिससे आप समझ सकें कि बिखरी हुई चीजों को कैसे समेटना होता है और फिर समेटी हुई चीजों का कैसे उपयोग में लाना होता है। तो मैंने एक मॉडल ही आपको प्रोवाइड किया था। और सच पूछे मित्रों जो सिविल सर्विस की तैयारी है वो मॉडल के तहत ही हो सकती है, क्योंकि अब जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न की तैयारी आप ठोस तरीके से पहले से करके नहीं रख सकते कि आपने रट लिया और जाकर के वहां आप उत्तर लिखकर आ गए। उसका मैंने आपको मॉडल प्रोवाइड किया था। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन था जो राज्यसभा से संबंधित था, इसके लिए मैंने स्पेशल ऑडियो गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड किया, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स के लिए था। और तीसरा ऑडियो जो मैंने तीसरा क्वेश्चन जो दिया था, खासकर किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न, उसका मेरे दिमाग में पहले से ही उसके बारे में ये विचार था कि वह ऑडियो मैं संडे को प्रोवाइड करूंगा, जो अभी आप कमिंग संडे में आपको मिलेगा। तो मुझे लगा मित्रों कि अब तीन क्वेश्चंस के मॉडल मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं और सही मायने में उनकी तैयारी कैसे होनी चाहिए उसके बारे में जो जो भी मतलब मेरे पास था या मेरी समझ थी, मेरे अपने अनुभव थे, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करने की हर संभव कोशिश की थी। तो फिर मुझे लगा कि अब कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं और फिर आप उस क्वेश्चन पर मेहनत करें, क्योंकि सिविल सर्विस की जो तैयारी होती है दोस्तों वो क्वेश्चन पर बेस्ड नहीं होती, वो बेसिकली टॉपिक पर बेस्ड होती। अब कम से कम जो 2013 से मेंस का जो पैटर्न बना है, अब वो क्वेश्चन पर बेस्ड हम तैयारी नहीं कर सकते। अब उसकी जो तैयारी होगी वो टॉपिक पर बेस्ड तैयारी होगी। जैसे इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन राज्यसभा पर दिया था, अब राज्यसभा पर आपकी तैयारी उस तरीके से इसमें नहीं हो सकती कि आपने किताब पढ़ ली, राज्यसभा के बारे में सब चीजें जान ली और आप उसका उत्तर लिखकर आ सके। टॉपिक राज्यसभा का होगा लेकिन तैयारी बड़े अलग तरीके से होगी, और बहुत नेचुरल है कि इसकी तैयारी में जो आपके अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, डिस्कशंस हैं, न्यूज हैं, यही आपकी मदद करेंगे। तो चूंकि अगर हम सैद्धांतिक रूप में बात करें तो हमें इस बारे में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए कि हमें जो सिविल सर्विस की तैयारी करनी है वो टॉपिक पर बेस्ड करनी है। इसीलिए फिर मैंने मन बना लिया था कि अब क्वेश्चन अलग से देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि इस बीच में मेरे पास काफी मेल आए जिसमें स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया कि प्रश्न दिए जाएं, यहां तक कि कुछ मेल में मुझे याद भी दिलाने की कोशिश की गई कि आपने वो प्रश्न नहीं दिए हैं, वो बिल्कुल सही थे क्योंकि मैंने इसकी कोई पूर्व घोषणा नहीं की थी कि अब प्रश्न नहीं दिए जा रहे हैं। तो मित्रों चूंकि अब आप लोगों की इच्छा है, या मैं ये कहूं कि आप लोगों की जरूरत है, और इस जरूरत का मैं इस रूप में सम्मान भी करता हूं क्योंकि ये काफी कुछ व्यावहारिक भी है। व्यावहारिक इस मायने में कि आप कम से कम इन प्रश्नों को आधार बना करके लिखने की एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये तो आप कर ही सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन फ्रेम करना शायद उतना संभव नहीं होगा। यदि आप क्वेश्चन फ्रेम भी कर लेंगे तो हो सकता है कि उतने सिविल सर्विस के उतने करीब न पहुंच पाएं जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर एक लंबा अनुभव, एक बहुत बड़ा एक विजन, उस टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे डायमेंशंस, उसकी डेप्थ, इस तरह की चीजें चाहिए जो मैं नहीं मान करके चलता हूं कि सभी विद्यार्थियों के पास होते हैं। ऐसी स्थितियों में क्वेश्चन के आधार पर प्रश्न लिख पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता, मतलब खुद बना करके उस पर लिख पाना मुश्किल हो सकता है। फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मुझे ये तो करना ही चाहिए और इतना तो मैं कर ही सकता हूं कि मैं आप लोगों को एक प्रश्न प्रोवाइड करता रहूं और आप उस पर लिखने की प्रैक्टिस करते रहें। हां ये मैं जरूर होगा कि अब उन्हीं प्रश्नों पर आधारित कैसे लिखा जाना चाहिए, कहां से आप सामग्री लाएंगे, मैं अपने स्पेशल ऑडियो गाइडेंस को अब उसी तक सीमित नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मित्रों फिर हम बहुत छोटे से दायरे में सिमट जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इस ऑडियो को छोटे से दायरे में सीमित करूं। हां, आप लोगों के लिए मैं प्रश्न प्रोवाइड करता रहूंगा, आप लोग उस प्रश्न पर प्रैक्टिस करें लिखने की, और ऐसा आपको करना भी चाहिए, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो मित्रों, ये बात कहने के बाद अब मैं इस सप्ताह का प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं। ये प्रश्न आप अभी सुन सकते हैं, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको बोलूंगा, और फिर ये नॉलेज सेंटर पर जहां भी पहले ये प्रश्न अवेलेबल होते थे वहां ये प्रश्न लिखा हुआ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मित्रों, प्रश्न है, प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक राष्ट्रीय बाजार के एकीकरण की दिशा में किया गया एक अधूरा प्रयास है। इस सत्य की समीक्षा करते हुए उन महत्वपूर्ण दबावों को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण सरकार को इसके लिए विवश होना पड़ा। ब्रैकेट वही मित्र, 200 शब्द मैं रिपीट कर रहा हूं। प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक राष्ट्रीय बाजार के एकीकरण की दिशा में किया गया एक अधूरा प्रयास है। इस सत्य की समीक्षा करते हुए उन महत्वपूर्ण दबावों को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण सरकार को इसके लिए विवश होना पड़ा। ये प्रश्न है मित्रों, इस पर आप लोग ट्राई कीजिए। ये बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, मैंने जानबूझ करके इसे चुना है क्योंकि इससे जुड़े हुए जो तथ्य होंगे वो आप लोगों के दिमाग में बहुत क्लियर होंगे, ताजे होंगे, ज्यादा भी होंगे, तो शायद इसको लिख करके आप अपने को और अच्छे तरीके से इवेलुएट कर सकेंगे। मित्रों, अब एक अंतिम सूचना है, और ये खासकर भोपाल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, चाहे वो मेरे क्लास के स्टूडेंट हों या मेरे ऑडियो लिसनर हों या नहीं भी हों, तो वो दूसरों को भी सूचित कर सकते हैं कि कल 10:30 बजे जो यहां सेंट्रल लाइब्रेरी है आपके पुराने भोपाल में, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहां 10:30 बजे मेरा एक लेक्चर है, और खासकर वहां काफी बड़ा एक ग्रुप है लड़कों का जो लगातार वहां इकट्ठा होता है, और उनको बहुत से जो अधिकारी हैं और जो अनुभवी व्यक्ति हैं वो उनको सिविल सर्विस के लिए, आईएएस के लिए भी और स्टेट सिविल सर्विस के लिए भी गाइड करते रहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के प्री एग्जाम को लेकर के, अभी जो सिविल सर्विस के जो प्री एग्जाम को लेकर के जो होना है, जो प्री एग्जाम होना है उसको लेकर के लेक्चर्स, 2-3 दिन की वर्कशॉप उन्होंने ऑर्गेनाइज की है, तो उसकी शुरुआत है। तो हम लोग बेसिकली प्री की तैयारी और प्री एग्जाम के बारे में ही बातचीत करेंगे। तो कल 10:30 बजे मेरा वहां लेक्चर है सेंट्रल लाइब्रेरी में, तो वहां जो भी आप में से इच्छुक हों, जो भी स्टूडेंट, उनका स्वागत है, वो वहां आ सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। तो मित्रों, आज का तो जो मोटिवेशन वाला जो पूरा वक्त था वो इस तरह की सूचनाओं में ही निकल गया, लेकिन चलिए हम थोड़ा सा और वक्त मोटिवेशन वाले को कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो न्यूज हैं और अखबारों की जो क्लिपिंग्स भी हैं वो काफी कम हैं, तो हम 2-4 मिनट मोटिवेशन वाले को बढ़ा देते हैं। मित्रों, मैं फेथ एंड फियर पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, और मुझे बेहद खुशी है कि फियर पर मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। आप लोग बता रहे हैं कि कैसे इससे आप लोगों को फायदा हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैंने इसे मित्रों, आपको मालूम है कि मैंने पीकू फिल्म से जोड़ दिया है। मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि एक बार कोशिश कीजिए कि आप पीकू फिल्म देखें, आप देखिए कि कैसे छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके और एक महत्वपूर्ण चीज तैयार की जा सकती है। इसी बात को आप अपने सिविल सर्विस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल सर्विस के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको बड़े बड़े ना तो हाई फाई फैक्ट लाने होते हैं और ना हाई फाई शब्दों के इस्तेमाल करने होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों को आप जोड़ करके एक खूबसूरत उत्तर प्रोवाइड कर सकते हैं एग्जामिनर को, और वो डेफिनेटली आपको अंक देंगे, मार्क्स देंगे। तो मित्रों, जो हम लोग फियर की बात कर रहे थे उसमें देखिए एक बहुत विचित्र सी साइकोलॉजी होती है दोस्तों, फियर से जुड़ी हुई ये साइकोलॉजी होती है। होता क्या है कि हम फियर करते रहते हैं, फियर करते रहते हैं, किसी चीज से डरते रहते हैं, अनावश्यक रूप से हम डरते रहते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जो बहुत खतरनाक वक्त होता है, वो ये कि वो फियर हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। मतलब हम उस फियर को जीने के आदि हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ जुड़ा रहे, ये बना रहे, और हमें डर लगता है कि यदि कहीं ये चला गया तो क्या होगा, हम घबराने लगते हैं। विचित्र सी बात है मित्रों कि हम जिस चीज से घबरा रहे थे कि ये न हो, कहीं ऐसा न हो कि ये हो जाए, अब पता नहीं वो हुई है या नहीं हुई है, घबराते घबराते हम उस घबराहट के ही इतने आदि हो जाते हैं कि अगर पूरे टेस्ट के बाद ये पता लगे कि नहीं उसमें तो ये चीज है ही नहीं, तो वो मानने को तैयार ही नहीं होगा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे ये बीमारी है। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं है? मित्रों, पीकू फिल्म का वो दृश्य याद करने की कोशिश कीजिए जिसमें दीपिका पादुकोण, जिसका नाम पीकू है फिल्म में, अपने पापा से कहती है कि यह आपकी रिपोर्ट है और इस पूरे के पूरे रिपोर्ट में न आपको ब्लड प्रेशर है, न फलाना है, न शुगर है, किडनी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि आपको बीमारी है? और आपको इतने सारे टेस्ट कराने के लिए कहा किसने था? आपको एक सिंपल सा छोटा सा टेस्ट कराना था और आपने ये ढेर सारे टेस्ट करा लिए। वो चिंतित हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझको बीमारी ही ना हो। मतलब वो बीमार अपने बारे में सोचते सोचते जो झूठ है कि मुझे बीमारी है, उस झूठ को इतना बड़ा सत्य मान लेता है कि सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाता। सोच कर देखिए दोस्तों कि झूठ हमारे लिए इतना बड़ा सच बन जाता है कि सच झूठ हो जाता है। और मित्रों, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कोई कर क्या सकता है? आप और हम कोई क्या कर सकेंगे? न तो वो खुद कर सकता है और बाहर वाले तो कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि ये मानने को तैयार ही नहीं है। मित्रों, ये बहुत बहुत खतरनाक स्थिति होती है। और फिर होता क्या है मालूम है? कि आपने झूठ को सच मान लिया, हमने फियर को अपने जीवन का सच मान लिया। नहीं, वहां तो भूत है, नहीं मुझे तो ये बीमारी है, नहीं मैं तो मूर्ख ही हूं, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने ये मान लिया। मान लीजिए अब क्या होगा, पता है जो सबसे बड़ी बात होगी? अब मैं तर्क कुतर्क के जरिए, वितर्क के जरिए ये सिद्ध ही करने लगूंगा कि नहीं मैं ही सच हूं, हां मैं ये काम नहीं कर सकता, देखो मैंने वहां किया, वहां मैं फेल हो गया, इस परीक्षा में बैठा इसमें मैं फेल हो गया, स्टेज पर जाता हूं तो मैं बोल नहीं पाता हूं, कि मैं जो पढ़ता हूं थोड़े दिनों के बाद मुझे मैं भूल जाता हूं, पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता है, तो मैं ये कर ही नहीं सकता, सिद्ध कर देंगे। और आप सुनने वाले को लगेगा कि सच में ये नहीं कर सकता है, जबकि ये सारी के सारी अपने दिमाग के द्वारा रचे गए सारे के सारे षड्यंत्र हैं। मित्र, याद कीजिए पीकू फिल्म का वो दृश्य याद कीजिए कि किस तरह से जो अमिताभ बच्चन जी हैं, जो उसमें भास्कर बैनर्जी बने हैं, उच्चारण मैं नहीं कर पा रहा हूं, बंगाली उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं, माफी चाहूंगा, तो वो कितने तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं कि ये बाहर घूमने जाने का क्या मतलब है, बाहर घूमने जाओ उसमें पैसा खर्च करो, फिर दूसरे के बिस्तर पर सो, डिस्टर्ब हो और पैसा भी खर्च करो, तो बहुत ज्यादा विरोधी है वो बाहर जाने के, आउटिंग के भयानक विरोधी हैं, और जबकि आउटिंग के वो बहुत बड़े प्रेमी हैं। देखते हैं कि जब कलकत्ता जाने की बात होती है तो वो फ्लाइट की जर्नी को रिजेक्ट कर देते हैं, वो ट्रेन की जर्नी को रिजेक्ट कर देते हैं और क्या कहते हैं कि नहीं हम तो रोड से जाएंगे, जबकि ये ज्यादा तकलीफ देह है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में या एकदम अनकॉन्शियस माइंड में वो इन चीजों को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। और आप देखिए कि जब वो ट्रेवल करते हैं तो उसको एंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते हुए जाते हैं, जिसको लेकर के ड्राइवर परेशान भी हो जाता है कि आप लोग कलकत्ता जा रहे हो या पिकनिक मनाने आए, वो कहता है ये बात। और फिर जब कलकत्ता पहुंच जाते हैं तब क्या होता है, कलकत्ता पहुंच जाते तो घूमना चाहते हैं, कहीं वो साइकिल से घूमते हैं, कभी वो नाव पर घूमते हैं, कभी वो पैदल टहलते हैं, वो घूमना चाहते हैं। तो जब आप घूमना चाह रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड पर, ये तो आपका सत्य है, तो फिर आपने कुतर्क के जरिए ये सत्य क्यों रच लिया है कि फालतू है घूमने जाना, पैसा भी खराब होता है, डिस्टर्ब भी होते हैं। व्हाट इज दिस, इज दिस द रियलिटी, क्या ये आपका सच है? नहीं, लेकिन आपने अपने लिए एक सच गढ़ लिया है और वो इतना खतरनाक सच होता है कि फिर आप सच को स्वीकार कर ही नहीं सकते। आप चाहते हैं कि मैं बीमार रहूं, मैं बीमार पड़ूं, अरे बाप रे, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं जीऊंगा कैसे, क्योंकि बीमार के रूप में तो जीने की आदत हो गई है, एक सिस्टम बन गया है, एक डिसिप्लिन बन गया है। सुबह उठो, कराहते रहो, बिस्तर पर पड़े रहो, आराम से खाना मिलेगा, कुछ लोग पूछने आ जाएंगे, संवेदना भी व्यक्त करेंगे, काम करने के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, हाँ क्या मजे हैं, क्या आराम है। जब आदमी इस मनोविज्ञान का शिकार हो जाए मित्रों, तो कहा जाता है कि जब माझी नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए, और जब सावन आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। जिसको सच सही होना है, जिसको स्वस्थ होना है, जब वही स्वस्थ नहीं होना चाह रहा है और अपनी बीमारी में ही जी करके उसी को अपना स्वास्थ्य मान रहा है, तो आप हम या वर्ल्ड का जो बेस्ट फिजिशियन और सर्जन है वही क्या कर लेगा। और मित्रों ऐसा होता है और ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। तो मित्रों उस खतरनाक स्थिति के प्रति मैंने आप सबको अभी से सचेत किया है, क्योंकि इससे हमारी क्षमताएं दब जाती हैं, उनका दम घुट जाता है और हम सब लगभग लगभग फिनिश से हो जाते हैं। आप कह लीजिए सांस तो चल रही है लेकिन ऊर्जा का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों हम इस पर आगे और भी बात करते रहेंगे, फिलहाल इतना ही। अब मैं आता हूं दोस्तों AIR न्यूज पर। माफ कीजिएगा कि आज थोड़ा सा सूचनाएं ज्यादा थी, लेकिन अब सूचनाएं भी तो दोस्तों आप लोगों के लिए थी, मैं कोई फालतू की बात तो मैं समझ रहा हूं कि कर रहा हूं, क्योंकि न्यूज में ज्यादा है भी नहीं तो उस समय का हमने वहां उपयोग कर लिया। तो दो खबरें AIR न्यूज में हैं और जो बहुत ही सिंपल सी खबरें हैं, वो कोई बहुत बड़ी खबरें भी नहीं है। देखिए दोस्तों पहली खबर तो प्राइम मिनिस्टर के चाइना विजिट को लेकर के है। चाइना विजिट के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर की विजिट पूरी हो जाएगी तो डेफिनेटली उस पर लेख आएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे कि कैसे वो विजिट का क्या रिजल्ट रहा, डेफिनेटली आएंगे और आने शुरू भी हो गए हैं। अगर अभी ही आप देखेंगे तो आज मैं आपको चाइना विजिट को लेकर के लगभग 3-4 आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं। एक जो बेस्ट इसमें है मित्रों वो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी को लेकर के। बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी का मतलब है, इसको अगर आप थोड़ा सा इनलार्ज कर दें तो कल्चरल डिप्लोमेसी। भारत और चीन के बीच में बहुत पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं जिसके केंद्र में बुद्धिज्म रहा है। चीन के बहुत से मॉन्क, बहुत से स्कॉलर्स भारत आए और भारत से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के, शिक्षा लेकर के, यहां के ग्रंथों को लेकर के वहां गए, उन्होंने उसका अनुवाद किया और उसका इतना जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ कि आज भी चीन में बौद्ध धर्म प्रोमिनेंटली है। इससे पहले श्रीलंका यात्रा में जब मैं गया था तो मैंने आपको बताया था कि वहां किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रभुत्व है। जापान, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है इसमें आपको बुद्ध धर्म मिलेगा। और ये आप इतिहास के स्टूडेंट है ही, जनरल स्टडीज के रूप में ही क्यों ना, तो आपने देखा है कि किस तरह से अशोक के काल से फिर लगातार बौद्ध धर्म विदेशों में, इधर खासकर साउथ ईस्ट एशिया में लगातार जाता रहा और वहां के लोकल धर्म से वो मिलकर के उसने एक अलग तरीके का काफी कुछ रूप भी लिया और बदलाव भी उसमें हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहां जो बौद्ध धर्म है वो बिल्कुल ज्यों का त्यों उसी रूप में है, लेकिन देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में उनके लिए बुद्ध हैं। तो बट नेचुरल है कि जो पैगोडा है या जो स्तूप है, जो मंदिर है, उसमें आपको बुद्ध ही मिलेंगे। बुद्ध के स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया है। तो ये जो लिंक है हमारा, जो कल्चरल लिंक है और चीन के साथ जो बुद्धिज्म का जो लिंक है, इसका इस्तेमाल मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पहले ही दिन विजिट में वो पैगोडा भी गए और इस तरह से बातें भी हो रही हैं लगातार, वो सब आप देख रहे हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता हूं। तो मित्रों एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं आप लोगों को इसके लिए अभी से अलर्ट करना चाहूंगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद, उसमें एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं मित्रों कि लगभग 35 साल की इस बीच की जो हमारी विदेश नीति रही है, मैं कह सकता हूं 1980 से जो हमारी विदेश नीति रही है, जब से मैं एक सतर्क विद्यार्थी के रूप में सिविल सर्विस की तैयारी करने लगा था, तब से उसका मैं एक तरह से एक साक्षी हूं। मैं देख रहा हूं सामने सभी चीजों को होता हुआ देख रहा हूं, घटता हुआ देख रहा हूं। निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी जी ने अब जो विदेश नीति जो अपनाई है उसमें बड़ी नई चीजें दिखाई दे रही हैं। उसमें 2-3 चीजें तो बिल्कुल ही नहीं है, मैं अभी केवल आपको पॉइंट्स दे रहा हूं और आपको चाहिए कि आप इसके बारे में सतर्क हो जाएं कि हो सकता है कि सिविल सर्विस में इस तरह की कोई चीज पूछ ली जाए। पहला तो ये है कि अब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में पर्सनल टच को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, व्यक्तिगत संबंधों को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे जब चीन के राष्ट्रपति आए थे तो उन्होंने अहमदाबाद में अपने गृह राज्य में उनका स्वागत किया। अब जब गए हैं तो वो अलग जगह पर उतरे जहां चीन के राष्ट्रपति पहुंच करके उनका स्वागत कर रहे हैं। जापान में भी यही हुआ, सार्क देशों के सम्मेलन में उन्होंने सबको अपने शपथ ग्रहण, सार्क देशों के जितने भी लीडर्स थे शपथ ग्रहण समारोह में बुला लिया। तो ये पर्सनल टच देने की बात है। ओबामा जी आए तो अपने हाथ से बना करके चाय पिला दी। तो आप देख रहे हैं कि वो डिप्लोमेसी को एक तो पर्सनल रिलेशन के का उपयोग कर रहे हैं, ये उपयोग निगेटिव सेंस में नहीं है मित्रों। दूसरा, वो कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कोशिश उनकी होती है कि जहां वो जाएं तो कल्चरल लिंक को प्रोमिनेंटली बताएं। याद रखें, कल्चरल लिंक की प्रोमिनेंसी पहले भी होती थी और जो स्पीचेस होते थे उसमें कल्चरल लिंक की बात रखी जाती थी, लेकिन वो प्रचार प्रसार में उतना नहीं आता था दिखाई। अब हम देख रहे हैं कि मोदी जी उसे बहुत प्रोमिनेंटली सामने ला रहे हैं कल्चरल लिंक को, तो वो पर्सनल के बाद वो कल्चर पर आ जाते हैं। इसके बाद मित्रों तीसरा जो वो है वो एक्शन को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, एक्ट में आ रहे हैं, केवल बात नहीं भाषण नहीं एक्शन में आ रहे हैं। और इस एक्शन में जो एक बड़ी चीज दिखाई दे रही है वो प्रो एक्टिवनेस की बात है। प्रो एक्टिवनेस कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो करेगा तो फिर हम कुछ रिस्पांस करेंगे, नहीं, हमारी जरूरत है हम रिस्पांस करेंगे, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, जिसको एक्ट पॉलिसी कह लीजिए, ईस्ट एक्ट पॉलिसी। तो ये तीन चार चीजें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही हैं। मैंने अभी चर्चा की है चीन के विजिट में भी राष्ट्रपति जी की यही, प्रधानमंत्री जी की ये दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि जब वो साउथ कोरिया जाएंगे और फिर जब मंगोलिया जाएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो चीजें हमें दिखाई देंगी। इस आधार पर भी थोड़ी सी आप विदेश नीति को लगातार वॉच करते रहिए। तो मित्रों, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट है प्रधानमंत्री जी की चीन यात्रा पर, खासकर बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी को ही लेकर के। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आप पढ़िएगा जरूर। और फिर एक बहुत अच्छा आर्टिकल दैनिक जागरण में भी है ब्रह्मचेलानी जी का, जिसमें वो जो सिल्क रूट है जिस पर हम लोग खूब चर्चा करते हैं, सिल्क रूट, एक दो मेरे पास मेल भी आए हैं इसके बारे में, उस पर बहुत अच्छा आर्टिकल है। मैं चाहूंगा कि इसे आप अपने पास रख भी लें, इसकी फोटो कॉपी जिसको डाउनलोड करके। मेरी टाइम सिल्क रूट है, रोड से भी सिल्क रूट है, जिसको लेकर के लगातार भारत और चीन के बीच में बातचीत भी हो रही है। ये क्या है और क्यों किया जा रहा है, भारत कैसे इसमें बैलेंस बना करके रख सकता है, इसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। तो ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, हिंदी में है, मैं इसके बारे में ज्यादा बात करना जरूरी नहीं समझता। इसके बाद मित्रों, दैनिक जागरण में भी एक एडिटोरियल कमेंट है, चीन के साथ दोस्ती बहुत सामान्य है लेकिन कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं, आपका रिपीट हो जाएगा। और फिर दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल है, खासकर इस बात को लेकर के है कि जो चीन का जो इकोनॉमिक मॉडल है क्या वो भारत के लिए ज्यों का त्यों सुटेबल हो सकता है। इसमें उन्होंने बताया है कि ऐसी बात नहीं है कि भारत ज्यों का त्यों उस मॉडल को स्वीकार करे। चीन ने 1980 के आसपास जब इस मॉडल को स्वीकार किया था उस समय वर्ल्ड सीनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था, और खासकर 2008 के बाद जो आर्थिक मंदी का दौर आया, जो विश्व में आया, उसके बाद पूरे के पूरे विश्व का सीनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। तो ऐसी स्थिति में भारत अब उसी मॉडल को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक मैं समझता हूं कि एक एनालिटिकल पावर डेवलप करने की दृष्टि से एक अच्छा आर्टिकल है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मित्रों, इसके बाद जो दूसरी जो खबर थी वो खबर थी बाल श्रम विधेयक। मंत्रिमंडल ने जो बाल श्रम कानून में परिवर्तन करने की अपनी स्वीकृति दी है, उसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी। न्यूज में केवल यही उल्लेख था कि मानसून सत्र में इसे प्रस्तुत किया जाएगा संसद में। इसको लेकर के मैंने आपसे कहा था, अगर आपको ध्यान हो, कि इस पर अब चर्चा शुरू होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल मैंने इस पर थोड़ी सी बात भी की थी, अब इस पर आर्टिकल शुरू आने शुरू हो गए हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है मित्रों, जो खासकर बाल श्रम को ही लेकर के लिखा गया है, और जो हम उसमें आपने देखा है कि जो स्पेशली जो गवर्नमेंट ने जो अपने में कहा है कि ये जो बनाया गया है, इस बात को ध्यान में रख करके बनाया गया है कि हमारा जो समाज है और जो हमारे सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है उसके तहत हम बाल श्रम को किस तरीके का बनाएं, किस तरीके का होना चाहिए, उस पर आधारित किया गया है। तो ये बहुत सिंपल सा आर्टिकल है लेकिन बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये आप देख लीजिएगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल है। मित्रों, न्यूज में बस इतना ही था, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। तीन क्लिपिंग्स और मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ये जो तीनों क्लिपिंग्स हैं, तीनों की तीनों हिंदी के क्लिपिंग्स हैं। टाइम भी हो चुका है, मैं नहीं समझता कि क्लिपिंग्स मेरी किसी तरह के एक्सप्लेनेशन की मांग करते हैं। मैंने अंडरलाइन कर दिया है और आप सब अब इतने मेच्योर हो चुके हैं कि बड़े आराम से उसे समझ लेंगे। तो मित्रों, ये पूरी तरह से मैं आप लोगों के अपने विवेक पर छोड़ता हूं। एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के, दूसरा है खासकर जो लिंग परीक्षण, जो गर्भ की स्थिति में जो लिंग परीक्षण कराते हैं उसकी असफलताओं को लेकर के, क्योंकि अभी बीच में कुछ स्टडीज आई हैं। इस स्टडीज में एक सबसे चौंकाने वाली जो बात मुझे लगी, जिसके बारे में मुझे पहली बार जानकारी लगी, वो ये है कि पहले हम लोग ये मानते थे कि जो आदिवासी समाज है वहां लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, लड़के और लड़की में, और वहां मतलब जो अनुपात है लड़के और लड़कियों का, तो लड़कियों का अनुपात ज्यादा है। कुछ ऐसे हमारे पास डेटा थे भी, लेकिन अभी जो अंडमान निकोबार और कुछ आदिवासी क्षेत्रों से जो आंकड़े मिले हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं कि वहां लड़कियों का अनुपात बहुत ज्यादा कम है। तो ये एक बदलता हुआ समाज या क्या है, सच में बहुत चौंकाने वाला तथ्य है। वो एडिटोरियल कमेंट में दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे। फिर राष्ट्रीय सहारा का एक आर्टिकल है मित्रों, खासकर खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के, फूड प्रोसेसिंग को लेकर के। और जब हम किसानों की बात करते हैं, रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसानों की गरीबी की बात करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत मायने रखते हैं। और सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखकर 1988 में अलग से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी स्थापित किया था। तो कैसे उसको क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या संभावना है, उसको लेकर के आर्टिकल है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो मित्रों, अब मैं आता हूं बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर, और ये अंतिम चरण है ईमेल का। मित्रों, विशेष कुछ नहीं है, काफी मेल हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उन सबके प्रति बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम में मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, वो है उत्कर्ष दीप, सुमित सिंह सहारनपुर से, राजीव रघुवंशी भोपाल से, पुष्पेंद्र शर्मा, सुशीला गावड़े कांकेर छत्तीसगढ़ से, तनुप्रिया सिंह, गौरव धीमान चंडीगढ़ से, विकास जाखड़, मनोहर दत्त मिश्रा पटना से, और नीरज कुमार औरंगाबाद से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार मेल लिखने के लिए। तो मित्रों, फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कल शनिवार है, कल सी सेट का जो फॉर्मेट तो नहीं कहना चाहिए पेपर का, लेकिन उसका जो वेटेज चेंज हो गया है आपके एग्जामिनेशन में, उसको ध्यान में रखते हुए अब आपको उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसको लेकर के कल एक ऑडियो आपको सुनने को मिलेगा, जो लगभग 39 to 40 मिनट्स का, इन बिटवीन 39 to 40 मिनट्स का है, कल अवेलेबल होगा। परसों आपको आर्टिकल्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, और जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड बैच को, उनको मिलेगा स्पेशल ऑडियो गाइडेंस। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं दो दिन के लिए इजाजत चाहूंगा। कल मेरे ही वॉइस में है, लेकिन वो प्री रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड है, वो मैंने कल ही रात में उसकी रिकॉर्डिंग कर दी थी। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आज आपसे इजाजत मांग रहा हूं, और दो दिन के लिए इजाजत मांग रहा हूं। सोमवार को फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें, प्यार भरा नमस्कार।